लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वेटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि हम सब लोग सृष्टि की रक्षा के प्रति समर्पित युवाओं में आनंदित होते हुए सरल और पर्यावरण की दृष्टि से धारणीय जीवन शैली हेतु सही विकल्पों को चुनने का साहस प्राप्त करें। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण विषय हैं बुधवार ये आमदर्शन समारोह में संत पापा फ्रांसिस की धर्म शिक्षा माला, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता हैं फादर संजय दिलीप एक्का और सिस्टर अनुग्रह मिंज। संत पापा फ्रांसिस ने अपने बुधवार ये आमदर्शन समारोह के अवसर पर संत पापा पॉल षष्ठम के सभागार में जमा हुए सभी विश्वासियों और तीर्थयात्रियों का अभिवादन करते हुए कहा,
Fratelli e sorelle, buongiorno. Proseguiamo il nostro itinerario di approfondimento della fede, della nostra fede, alla luce della lettera di San Paolo ai Galati.
भाइयों एवं बहनों, सुप्रभात। हम गलातियों के नाम संत पौलुस के पत्र से आलोकित अपने विश्वास की यात्रा को और मजबूत बनाएं। प्रेरित उन ख्रिस्तियों के लिए इस बात पर जोर देते हैं कि वे ईश्वर से मिली मुक्ति के रहस्य को, जो उनके लिए घोषित किया गया है, ना भूलें। विश्व समाचार लेखक संत योहन की बातों से शत प्रतिशत सहमत होते हुए इस बात पर जोर देते हैं कि यीशु ख्रिस्त में हमारे विश्वास ने हमें सही अर्थ में ईश्वरीय संतान और उत्तराधिकारी बनाया है। ख्रिस्तियों के रूप में हम बहुधा इस सच्चाई को सहज ही लेते हैं, बल्कि हमें कृतज्ञता पूर्ण भाव से इस बात को याद करने की जरूरत है जब हम बपतिस्मा में इस कृपा के भागीदार बने, जिससे हम अपनी कृपा को अधिक चेतना में जीने के योग्य बन सकें, जो हमें दिया गया है। संत पापा ने कहा कि मैं विश्वास करता हूँ हम सभी अपने बपतिस्मा की तिथि को जानते हैं, हमें उस दिन मुक्ति मिली और हम ईश्वर के संतान बने। उन्होंने कहा, जो अपने बपतिस्मा की तारीख को नहीं जानते, अपने दादा दादी, माता पिता, चाचा चाची से इसके बारे में पूछ सकते हैं, मेरा बपतिस्मा कब हुआ है, और उस दिन की याद हर साल करें, क्योंकि वही वह दिन है जब हम ईश्वर के संतान बने। वास्तव में यीशु ख्रिस्त के द्वारा मिले विश्वास में हम ईश्वर के दिव्य संतान बन गए हैं। संत पौलुस जिसे संतति होने की बात कहते हैं, जो सृष्टिकर्ता में साधारण पुत्र पुत्रियां होने से भिन्न है, वे विश्वास पर जोर देते हैं जो हमें यीशु ख्रिस्त में ईश्वर की संतान बनाता है। यीशु ख्रिस्त में विश्वास हमारे अंतर का आधार है। हर नर और नारी ईश्वर की संतान है, चाहे वह किसी भी धर्म का हो, लेकिन यीशु ख्रिस्त में हमारा विश्वास ख्रिस्तियों के रूप में हमें एक विशेष पहचान प्रदान करता है, और यह केवल ख्रिस्त के मुक्ति विधान में सहभागी होने और हमारे बपतिस्मा ग्रहण करने से शुरू होता है।
यीशु è diventato nostro fratello e con la sua morte e resurrezione ci ha riconciliati con il padre.
यीशु हमारे भाई बनते और उनकी मृत्यु और पुनरुत्थान में हमारा मेल मिलाप पिता ईश्वर से होता है। जो कोई विश्वास में यीशु को स्वीकार करता है, वह ख्रिस्त को धारण करता है और बपतिस्मा द्वारा ईश्वरीय संतति बनता है। अपने पत्रों में संत पौलुस बपतिस्मा का जिक्र कई बार करते हैं। उनके लिए बपतिस्मा ग्रहण करना यीशु के रहस्य में प्रभावकारी ढंग से सहभागी होना था। उदाहरण के लिए रोमियों के नाम अपने पत्र में वे इस बात की चर्चा करते हैं कि बपतिस्मा के द्वारा हम यीशु के संग मरकर दफनाए गए और उनके संग जी उठे हैं। अतः बपतिस्मा केवल बाहरी धर्म विधि नहीं है, वे जो बपतिस्मा ग्रहण करते उनका आंतरिक रूपांतरण होता है, वे नए जीवन को धारण करते हैं जो उन्हें ईश्वर की ओर अभिमुख करता और वे उन्हें अब्बा पिता कहने के योग्य बनते हैं। प्रेरित बपतिस्मा में प्राप्त नई पहचान को सुदृढ़ता पूर्वक सुस्पष्ट करते हैं जो जातीय धार्मिक स्तर पर मौजूद मतभेदों पर हावी होता है। अब ना तो कोई यहूदी है और ना यूनानी, ना कोई दास है और ना स्वतंत्र, ना कोई पुरुष है और ना स्त्री।
Si leggono spesso con troppa fretta questa espressione, senza cogliere il valore rivoluzionario che possiedono.
हम इन अभिव्यक्तियों को इसमें निहित गूढ़ मूल्यों को समझे बिना अति शीघ्रता से पढ़ते हैं। संत पौलुस का गलातियों के पत्र में यह लिखना कि यीशु ख्रिस्त में कोई यहूदी और यूनानी नहीं, जातीय धार्मिक क्षेत्र में एक प्रामाणिक स्थिति को खत्म करने के बराबर था। चुनी हुई प्रजा के रूप में यहूदियों को गैर यहूदियों से ऊपर रखता था। प्रेरित स्वयं इसके बारे में दृढ़ता से कहते हैं, अतः प्रेरित के द्वारा दी जाने वाली नई शिक्षा स्वयं विधर्मी जान पड़ती है। हम सभी बराबर कैसे हो सकते हैं? हम में विभिन्नताएं हैं। दास और स्वतंत्रों के बीच बराबरी का तर्क भी अपने में एक चौंकाने वाला दृष्टिकोण था। प्राचीन समाज में दासों और स्वतंत्र नागरिकों के बीच का अंतर अपने में विशिष्ट था। कानूनों के आधार पर स्वतंत्र नागरिक अपने सभी अधिकारों का लाभ उठाते थे, जबकि गुलाम दासों को मानवीय सम्मान का दर्जा भी नहीं मिलता था। आज भी ऐसा होता है। दुनिया में लाखों हैं जिन्हें खाने का अधिकार नहीं है, शिक्षा का अधिकार नहीं है, काम करने का अधिकार नहीं है। वे नए गुलाम हैं, वे हाशिए पर हैं, जिनका शोषण किया जाता है। आज भी गुलामी है। हम इन लोगों को मानवीय सम्मान से वंचित करते हैं। हम थोड़ा इस पर विचार करें, संत पापा ने कहा।
Così infine l'uguaglianza in Cristo supera la differenza sociale tra i due sessi, stabilendo una uguaglianza tra uomo e donna, allora rivoluzionario e che c'è bisogno di raffermare anche oggi.
इस भांति यीशु ख्रिस्त में हम सामाजिक लिंग भेद नर और नारी में अंतर को स्थापित होता पाते हैं, जिसे हमें आज भी दृढ़ता पूर्वक घोषित करने की आवश्यकता है। आज भी हमें इस बात को पुष्ट करने की आवश्यकता है। संत पापा ने कहा कि कितनी परिस्थितियों में हम नारियों को तुच्छ समझते हैं। कितनी बार हमने यह सुना है, कुछ मत करो, वे महिलाओं के कार्य करने की चीजें हैं। नर और नारी एक समान हैं, लेकिन इतिहास में आज भी नारियां गुलाम हैं। नारियों को पुरुषों के बराबर मौके नहीं मिलते हैं। संत पापा ने इस बात पर जोर देते हुए कहा कि हमें संत पौलुस की बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। हम यीशु मसीह में बराबर हैं। संत पौलुस इस बात को दृढ़ता से प्रस्तुत करते हैं। बपतिस्मा प्राप्त लोगों के रूप में चाहे हम किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हों, हम सभी एक समान हैं, क्योंकि यीशु ख्रिस्त में हम एक नए प्राणी बनाए गए हैं। ईश्वरीय संतान के रूप में हमारी सभी विभिन्नताएं गौण हो जाती हैं, क्योंकि यीशु ख्रिस्त में मिली मुक्ति और बपतिस्मा के फलस्वरूप हम उनकी एक संतान बन गए हैं। संत पापा फ्रांसिस ने कहा,
Siamo dunque chiamati in modo più positivo a vivere una nuova vita che trova nella figliolanza con Dio la sua espressione fondante.
हम सकारात्मक रूप में एक नया जीवन जीने हेतु बुलाए जाते हैं, जो मूल रूप में यीशु ख्रिस्त में हमें ईश्वरीय संतान बनाता है। हम सबों को आज ईश्वरीय संतान होने की सुंदरता को खोजने की आवश्यकता है, क्योंकि हम सभी भाई बहनों के रूप में ख्रिस्त से संयुक्त हैं। ख्रिस्त विश्वासियों के रूप में हमारे बीच भेदभाव नहीं होना चाहिए। प्रेरित संत याकूब अपने पत्र में कहते हैं कि हम धनी और गरीब के बीच भेदभाव ना करें, क्योंकि हम सभी बराबर हैं। हमारी बुलाहट संपूर्ण मानव जाति की एकता को ठोस रूप में व्यक्त करते हुए उसे स्पष्ट करना है। सभी चीजें जो लोगों के बीच मतभेदों को बढ़ाते हैं, भेदभाव का कारण बनते हैं, ईश्वर के सामने उनका कुछ भी अर्थ नहीं है। हम ईश्वर के प्रति कृतज्ञता के भाव प्रकट करते हैं, जिन्होंने यीशु ख्रिस्त में हमारा उद्धार किया है।
Ciò che conta è la fede, che opera seguendo il cammino dell'unità indicato dallo Spirito Santo.
Hamare liye mahatvapurn vishwas hai, jiske anurup pavitr atma hamara marg prashast karte hain. Hamara uttardayitva yah hai ki hum is path par nirnayak roop se ekta mein aage badhte jaye. इतना कहने के बाद संत पापा फ्रांसिस ने अपनी धर्म शिक्षा माला समाप्त की और सभों के संग हे पिता हमारे प्रार्थना का पाठ करते हुए सभों को अपना प्रेरितिक आशीर्वाद प्रदान किया।
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Aeternum nostrum in nomine Domini.
Qui feci caelum et terram.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius Spirito Santos.
Amen. एक रहते उस परिवार के जन जो गाते हैं एक साथ प्रभु भजन एक रहते हैं उस परिवार के जन गाते हैं एक साथ प्रभु भजन उस घर का कभी न होगा नाश जहां प्रभु ईश्वर करता वास उस घर का कभी न होगा नाश जहां प्रभु ईश्वर करता वास एक रहते
आप वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं लीजिए प्रस्तुत है समाचार माता कलीसिया 8 सितंबर को माता मरियम का जन्मदिन मनाती है इस दिन संत पापा फ्रांसिस ने ट्वीट कर सभी क्रिश्चियों से माता मरियम की मध्यस्थता द्वारा ईश्वर की संतान होने की खुशी का अनुभव करने हेतु प्रेरित किया संदेश में संत पापा ने लिखा इस दिन जब हम माता मरियम के जन्म का समारोह मनाते हैं तो हम अपनी माँ मरियम से ईश्वर की संतान होने की सुंदरता को फिर से खोजने मतभेदों और संघर्षों को दूर करने और भाई बहनों के रूप में जीने हेतु हमारी मदद करने के लिए याचना करें आज अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस है संत पापा फ्रांसिस ने ट्वीट कर मानव इतिहास में शिक्षा के अनमोल योगदान एवं इसके हस्तांतरण पर प्रकाश डाला संदेश में उन्होंने लिखा शिक्षा दुनिया और इतिहास को मानवीय बनाने के सबसे प्रभावी तरीकों में से एक है शिक्षा सबसे ऊपर प्यार और जिम्मेदारी है जो समय के साथ पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती है हैशटैग साक्षरता दिवस और संत पापा फ्रांसिस ने वाटिकन के संत पापा पोल छठे सभागार में बुधवार आम दर्शन समारोह के अंत में इथियोपिया वासियों को विशेष रूप से याद कर उन्हें नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं दी संत पापा ने कहा इथियोपिया में 11 सितंबर को नया साल मनाया जाएगा मैं इथियोपिया के लोगों को विशेष रूप से उन लोगों के लिए अपना सौहार्दपूर्ण और स्नेही अभिवादन करता हूँ जो चल रहे संघर्ष और इसके कारण हुई गंभीर मानवीय स्थिति से पीड़ित हैं। संत पापा की आशा है कि नव वर्ष का यह समारोह भाईचारे और एकजुटता का समय हो सभी के दिलों में देश की शांति की सामान्य इच्छा जग पाए और संत पापा फ्रांसिस ने रोम में 8 से 11 सितंबर तक चल रहे ऑनलाइन 25वीं अंतर्राष्ट्रीय मरिया शास्त्रीय सम्मेलन के प्रतिभागियों को वीडियो संदेश दिया संत पापा ने प्रतिभागियों का अभिवादन कर कहा आज के धर्मशास्त्रों और संस्कृतियों मॉडल संचार दृष्टिकोण के बीच मरियम विषय पर इस 25वीं अंतर्राष्ट्रीय मरिया शास्त्रीय सम्मेलन को सामान्य से अलग तरीके से मनाने के बावजूद मैं पूरे दिल से आपकी खुशी में सहभागी होता हूँ हमारी खुशियाँ इतने सारे भाइयों और बहनों के मौन क्रंदन को न भूलें जो महामारी की विकराल घड़ी में बड़ी कठिन स्थिति में है प्रभु से मिलने वाला सच्चा आनंद हमेशा भूले बिसरे लोगों की आवाजों को जगह देता है ताकि उनके साथ मिलकर हम एक बेहतर भविष्य का निर्माण कर सकें। माता मरिया सुसमाचार का अनुसरण करती हुई और मानवता एवं ग्रह के सामान्य भलाई की सेवा में हमेशा उन आवाजों को सुनने के लिए शिक्षित करती हैं और वह खुद
एक नई दुनिया को जन्म देने के लिए आवाजहीन की आवाज बन जाती हैं, जहां हम सभी भाई बहने हैं, जहां हमारे समाज के तिरस्कृत लोगों के लिए भी जगह है। संत पापा ने कहा कि अपने 60 से अधिक वर्षों की गतिविधि में इस संस्थान ने दुनिया भर से, विशेष रूप से अंतर्राष्ट्रीय मरिया शास्त्रीय सम्मेलन के उत्सव के माध्यम से मरिया शास्त्र के विद्वानों का समन्वय और मरिया प्रेमियों को एक साथ ला रही है। उन्होंने उम्र के बदलाव में संकेत, विचार और अंतर्दृष्टि की पेशकश की, जो मानव पीढ़ियों से संबंधित जीवन, संचार और विचारों को विस्तृत करने और विश्वास को समझने एवं जीने के तरीके को त्वरित रूप से बदल देता है। यह सम्मेलन इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि कैसे मरिया शास्त्र संस्कृतियों के बीच संवाद की एक आवश्यक उपस्थिति है, जो भाईचारे और शांति को पोषित करने में सक्षम है। अंत में संत पापा ने सम्मेलन को तैयार करने और संगठन करने के लिए परम धर्मपीठीय मरिया अकादमी को धन्यवाद दिया। सृष्टि के मौसम 2021 के लिए एक संयुक्त संदेश में संत पापा फ्रांसिस प्राधिधर्माध्यक्ष बार्थोलोम और कैंटरबरी के महाधर्माध्यक्ष जस्टिन बेलवी ने सहयोग के महत्व पर जोर दिया और पर्यावरण क्षरण एवं जलवायु परिवर्तन के खतरे के लिए हमारी सामान्य प्रतिक्रिया के आवश्यक भागों के रूप में अल्पकालिक लाभों की स्थिरता को महत्व दिया। एक साल से भी अधिक समय से हम सभी ने एक वैश्विक महामारी के विनाशकारी प्रभावों का अनुभव किया है। हम सभी, चाहे गरीब या अमीर, कमजोर या मजबूत, कुछ दूसरों की तुलना में अधिक सुरक्षित या कमजोर थे, लेकिन तेजी से फैल रहे संक्रमण का मतलब था हम सुरक्षित रहने के लिए अपने प्रयासों में एक दूसरे पर निर्भर हैं। उक्त अवलोकन के साथ संत पापा फ्रांसिस प्राधिधर्माध्यक्ष बार्थोलोम प्रथम और कैंटरबरी के महाधर्माध्यक्ष जस्टिन बेलबी 1 सितंबर को जारी किए गए सृष्टि के संरक्षण के लिए संयुक्त संदेश शुरू किया। धर्मगुरु इस बात पर जोर देते हैं कि इस विश्वव्यापी आपदा का सामना करने में कोई भी तब तक सुरक्षित नहीं है जब तक कि सभी सुरक्षित न हों, क्योंकि हमारे कार्यों का वास्तव में एक दूसरे पर प्रभाव पड़ता है और आज हम जो करते हैं उसका प्रभाव कल पर पड़ता है। संयुक्त संदेश 4 अक्टूबर तक चलने वाले सृष्टि के मौसम 2021 के बीच आता है, जो ईश्वर की रचना के लिए प्रार्थना और देखभाल करने का अवसर प्रस्तुत करता है। साथ ही विश्व के नेता हमारे ग्रह के भविष्य पर विचार विमर्श करने के लिए स्कॉटलैंड के ग्लासगो में नवंबर में होने वाले संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP26 में मिलने की तैयारी करते हैं। इस पल को बर्बाद ना करें। धार्मिक नेताओं ने सभी को यह तय करने के लिए आमंत्रित किया कि हम आने वाली पीढ़ियों के लिए किस तरह की दुनिया छोड़ना चाहते हैं। हमें अलग तरीके से जीने और जीवन का चयन करना चाहिए। इस प्रकार यह संदेश विश्वास या विश्व दृष्टि की परवाह किए बिना सभी को आमंत्रित करता है कि हम पृथ्वी और गरीबों के क्रंदन को सुनने का प्रयास करें, उनके व्यवहार की जांच करें और पृथ्वी की रक्षा के लिए सार्थक बलिदानों की प्रतिज्ञा करें, जिसे ईश्वर ने हमें दिया है। उधर फिलीपींस में COVID-19 आपातकाल गंभीर बना हुआ है और अब तक महामारी से 34,000 से अधिक मौतें दर्ज की गई हैं। विशेष रूप से कोरोना वायरस के वेरिएंट चिंता का विषय है। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।